नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार किए जाने पर बल दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के माध्यम से जासूसी के आरोपों को खारिज किया। अब मोबाइल पर ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा, स्थानांतरण नीति को लेकर सूची पत्र जल्द जारी किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के पैरालंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते, जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है।
इसी समाज को सही अर्थों में विकसित माता विकसित माना जा सकता है, जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो। दिव्यांगजन संवेदनशीलता और करुणा के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज विपक्ष के संचार साथी ऐप के माध्यम से जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस ऐप के साथ जासूसी न तो मुमकिन है और न ही होगी। आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री सिंधिया ने साफ किया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के हिसाब से पंजीकरण करके ऐप को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं और वे इसे कभी भी अपने डिवाइस से डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने के लिए यह सुविधा दी है। मंत्री ने कहा कि 2023 में संचार साथी पोर्टल के बाद 2025 में लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के इरादे से जारी की गई इस ऐप को 1.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है और संचार साथी पोर्टल पर 20 करोड़ हिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। श्री सिंधिया ने बताया कि इस पोर्टल और ऐप के आधार पर 1.5 करोड़ धोखाधड़ी वाले मोबाइल फोन कनेक्शन काट दिए गए हैं, जबकि 26 लाख चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया, जिनमें से 7 लाख उनके मालिकों को वापस कर दिए गए हैं। इस बीच संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वालों के लिए इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करना जरूरी न करने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी साफ किया कि लोग जब चाहें ऐप हटा सकते हैं। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस ऐप के इस्तेमाल में 10 गुना बढ़ोतरी है। यह ऐप सुरक्षित है और इसका मकसद सिर्फ लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद दोनों ही किसी भी टीवी चैनल या समाचार पत्र के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 2100 रुपये हस्तांतरित किए। लक्ष्मी लाडो योजना की पहली किस्त 1 नवंबर को जारी की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
इस योजना के तहत 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है। हमने 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप पर 20 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। जिन बहनों का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, आप भी इसको जल्द से जल्द पूरा कर लें। आप जैसे ही यह प्रोसेस पूरा करेंगे, आपको भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। उन्होंने सभी लाभार्थी महिलाओं से कहा कि हर 3 महीने में यह राशि नियमित रूप से जारी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देशभर में 100% राशन कार्ड अब डिजिटल हो चुके हैं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि लगभग सभी 20,58,00,000 घरेलू राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं।
2020 में कोविड के समय से लेके 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकुला के शिक्षा सदन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बैठक में मुख्यतः स्थानांतरण नीति को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा डिजिटल स्मार्ट रूम, बकाया चिकित्सा बिल, जर्जर स्कूलों को फंड जारी करने सहित कई छोटे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।
विषयों पे आज हमने लगभग 18 से भी ज्यादा विषयों पे आज हमने चर्चा, एक एक चीज का रिव्यू करना। फिर कुछ संस्थाओं के लोग भी, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, छोटा मोटे जो ट्रांसफर होती है और उस पर हम लोग अगले 1-2 दिन में शेड्यूल जारी कर देंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जिस शेड्यूल के अंतर्गत जो लोग आते जाएंगे उनके हम ट्रांसफर करते जाएंगे और 1 अप्रैल को सभी अपने नए स्टेशन को ज्वाइन करें। जिसकी ट्रांसफर पहले भी होगी उसको भी 1 तारीख को ज्वाइन करें।
फतेहाबाद के निजी स्कूल में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। यह अशोभनीय है। अधिकारियों को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग द्वारा आज पलवल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपनिदेशक राजेंद्र सिंह भाटिया तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी संजय गुप्ता द्वारा की गई। श्री राजेंद्र सिंह भाटिया ने बताया,
ये कार्यशाली अपने विभाग स्टैटिस्टिक्स के बारे में दी जा रही है, जो हमारा डिपार्टमेंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है, तो उससे GDP कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकलता है। यहाँ पे हमने जो सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्टैटिस्टिक्स को डील करते हैं उनको बताया कि ये डाटा ग्रास रूट लेवल से ठीक टाइम पे और ठीक से प्रोवाइड करेंगे तभी हमारे राज्य प्रगति कर सकता है। हमने इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीम्स के बारे में भी बताया, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियोडिक लेबर सर्वे सेंट्रल लेवल पे करती है, हम उसको स्टेट लेवल पे भी 26-27 से शुरू करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी देश या राज्य बिना सटीक आंकड़ों के तरक्की नहीं कर सकता। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज शीतकालीन पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर तथा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में नगर निगम ने लगभग 5,00,000 फूलों के पौधों का वितरण किया। निगम द्वारा इस वर्ष कुल 17 करोड़ शीतकालीन फूलों के पौधे शहरवासियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार किए जाने पर बल दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप के माध्यम से जासूसी के आरोपों को खारिज किया। अब मोबाइल पर ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, स्थानांतरण नीति को लेकर सूची पत्र जल्द जारी किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।